Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 and 2331-4444. Once again, 2342-1050 and 2331-4444. And those of you who will be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hai Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। श्रोताओं, आज दिन शनिवार का है और आज का दिन, जैसा कि आपको मालूम है, आपका दिन है, क्योंकि आप चाहें तो कोई भी सवाल अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित हमसे जरूर पूछ सकते हैं। दो टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं, नम्बर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444, दोनों नंबर दिल्ली के, 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल को पूछें। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में फाइनेंशियल एक्सपर्ट विजय भूषण जी मौजूद हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है।
वार्म वेलकम विजय।
थैंक यू सो मच।
शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में।
निर्मला सीतारामन रिएटरेटेड द कमिटमेंट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट टू अचीव the dream of Viksit Bharat at 2047. In U.S. markets, Dow was the lone gainer among the three major U.S. equity indices. Nasdaq Composite was down by 2%. And crude oil prices advanced as the market kept an uneasy eye on unfolding turmoil in the Middle East. Brent settled at $87.29 per barrel.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत एट 2047 के सपने को हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमरीकी शेयर बाजारों में डाउ को छोड़कर सभी सूचकांक गिरे, नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स में 2% की गिरावट। और मध्य पूर्व में तनाव के कारण शुक्रवार को तेल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी, ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $87.29 के पार हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत एट 2047 के सपने को हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित भारत एट 2047 पर आयोजित एक संगोष्ठी में सुश्री सीतारमण ने दहाई अंक वाली मुद्रा स्फीति जैसी पिछली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए भारत के आर्थिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने निवेश आकर्षित करने में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका और कपड़ा, रसायन और एरोस्पेस क्षेत्र में राज्य की सफलता का भी उल्लेख किया। और इस पर हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, लेकिन उसके पहले चूंकि कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ संदीप दिल्ली से, तो सबसे पहले विजय जी चलते हैं संदीप के पास। संदीप जी, क्या सवाल है आपका, पूछ लें जी। संदीप जी, क्या आपको आवाज आ रही है?
आई थिंक हर्ष, वी हैव लॉस्ट।
यस,
सचिन, वी कुड कंटिन्यू with the story where the senior BJP leader has talked about the commitment of the BJP to achieve the dream of Viksit Bharat by 2047. What's your take on it?
Well, I think it's something which is which will take a lot of effort to achieve on a consistent basis. So maybe we should also have, you know, every 5 years certain points at which we will relook and okay. you know recalibrate.
इस पर हम और बात करेंगे राजेश की दरअसल अगर किसी देश को हम विकसित कहते हैं डेवलप्ड नेशन कहते हैं तो क्या उसकी परिभाषा होनी चाहिए पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत इस समय किस तरीके से हम तीसरी पर पहुंच जाएंगे और विकसित होने के रास्ते में क्या क्या सफलताएं और हम पाएंगे और क्या क्या बाधाएं हैं उस पर भी हम विजय भूषण जी से चर्चा करेंगे आज के हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट लेकिन उसके पहले विजय भूषण जी से सवाल पूछने के लिए भारत भूषण जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत भारत जी
हाँ सर सभी को नमस्कार
नमस्कार
विजय भूषण सर से मेरा प्रश्न दो है सर एक ये कि जैसे मान लीजिए एफएनडी से पूछ सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से सर
जी जी दोबारा पूछे
डेरिवेटिव मार्केट एफएनडो का पूछ
हाँ हाँ पूछ लीजिए बिल्कुल
जैसे कि सर खबर आती है जब एक ए नाम की कोई कंपनी है वो एफएनडो बैंड पीरियड में आ गई मान लीजिए 95% वाइड मार्क पोजीशन पता नहीं क्या होता है सर तो उसमें क्या हम इक्विटी के अंदर शेयर में न्यू पोजीशन बना सकते हैं या सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की नई पोजीशन खड़ी नहीं कर सकते हैं क्या सर और दूसरी चीज सर कि जो एक्सपायरी वाला लास्ट वीक जो होता है सर तो मंडे को हमें कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की इजाजत नहीं देती है डेरिवेटिव मार्केट एनएससी ऐसा क्यों है सर धन्यवाद
देखिए जो डेरिवेटिव मार्केट में आपने बताया अगर कोई उसमें बैंड स्क्रिप्ट में बैंड हो जाता है वो टोटल जैसे आपने कहा ना 95% उसमें जो मार्केट वाइड लिमिट के हिसाब से होता है लेकिन कैश मार्केट में कहीं भी कोई आप उसमें काम कर सकते हैं उसमें कहीं आपको कोई रुकावट नहीं है तो और दूसरा जो मतलब अब तो क्योंकि वीकली सेटलमेंट हो गया और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर डे ही एक सेटलमेंट आ जाता है अलग अलग जो सूचक अंक है तो इसलिए अब उतनी ज्यादा जो एक्सपायरी वीक की जो है जो एक इम्पोर्टेंस है वो पहले से कम हो गई है
Joining us from Raigarh is Kush. A warm welcome, Kush. Please ask your question.
जी नमस्कार सर मैं कुश बोल रहा हूँ सर मेरा सवाल ये है कि कई बार कंपनी के अच्छे नतीजे आने के बाद भी शेयर मार्केट गिरता क्यों है और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या डॉलर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं खरीद के
तिमाही नतीजे कंपनी के अच्छे होते हैं फिर भी उसके स्क्रिप्ट कई बार गिर जाते हैं अगले दिन ऐसा क्यों होता है
देखिए उसमें क्या है कि ये सारा मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है तो अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन से नीचे है तो उसमें जरूर मार्केट गिरता है तो आजकल जो जितने भी कंपनियां हैं वहां उनकी जो मैनेजमेंट है उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गाइडेंस दीजिए तो रेवेन्यू गाइडेंस तो बहुत सारी कंपनियां देती हैं तो अगर वो रेवेन्यू गाइडेंस पूरा नहीं कर पाती लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रही है तो मार्केट गिरता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ये हो जाती कि इतना तो होगा ही इससे ज्यादा क्या हुआ तो एक तो इसके ये चीजें दूसरी चीज आप
डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं
ट्रेडिंग कर सकते हैं
हाँ एक डॉलर में आप एक करेंसी मार्केट है उसके थ्रू आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मतलब एक पोजिशन लेकिन वो उसमें डिलीवरी नहीं होगी उसमें जो उसका प्राइस डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा
बिल्कुल और कई बार ये होता है कि कंपनियों की जो फंडामेंटल्स है विजय जी वो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन शेयर कई बार बहुत ज्यादा खरीदे जाने से जब उसमें बाइंग बहुत हो जाती है तो प्राइस उसके बहुत ऊपर चले जाते हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके नतीजे कैसे रहे हों अच्छे या बुरे अगर उसमें बिकवाली होती है प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने शुरू कर दी होती है तो उसके प्राइस गिरते हैं प्लस उसके बुक वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि अगर बुक वैल्यू पे से बहुत ज्यादा प्राइस है तो कई बार इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ कंपनी वो उसके शेयर गिर सकते हैं गोपाल हमारे अगले कॉलर होंगे मुंबई से गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका
आपने बोला हमारी अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर है तो ये जो अभी आबादी एक नंबर पे पहुंच गई है देश की
जी
पहले ही खाद्य महंगाई दर में चिंता का विषय बनी हुई है अगर ये आबादी पहले आप नंबर पे पहुंच गई तो खाद्य महंगाई दर की क्या हालत होगी इसका कोई जिम्मेदार कौन होगा पहला सवाल ये है दूसरा सवाल ये है पिछले पांच महीने में मैं देख रहा हूँ सर मार्केट जो है आंखें बंद करके बढ़ गई 15,000 पॉइंट बीएसई, 5,000 पॉइंट एनएसई और ये मिड कैप स्मॉल कैप 20,000 पॉइंट बढ़ गई। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रातों रात इतनी बढ़ गई?
पिछले 5-6 महीने में काफी मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना है आपका?
देखिए ये जो मार्केट है, आप देखेंगे कि कंपनियों के नतीजे भी पहले से बेहतर आए हैं और साथ साथ जो फ्लो है फंड्स का, जिसको हम एक टेक्निकल पोजीशन बोलते हैं, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, काफी वृद्धि हुई है। तो आज जो एसआईपी है जो कि एक वो 20,000 करोड़ के करीब आ गई है, तो जो निवेश हो रहा है शेयर मार्केट में वो काफी हो रहा है और उस निवेश के हिसाब से ये जो जितने सूचक अंक हैं वो बढ़े हैं। तो मतलब ये कहना कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वो तो इस पे भी निर्भर है कि कितने लोग और कितना पैसा उस समय मार्केट में आता है।
विजय जी, द निफ्टी एंडेड द वीक विद 372 पॉइंट्स लोअर अमिड जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, बट डू यू थिंक द बाइंग दैट वाज सीन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ फ्राइडे इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर्स फॉर द बुल्स?
वेल, आई थिंक इट इज पॉजिटिव बिकॉज you know, market was dropping for the fourth day in succession. So then to make a reversal, I think that is a very encouraging sign. And I think why do we get worried? From the high, we are only down 3-3.5%. I mean, I think investors should be prepared to see even a 10% dip. But that will not change the basic journey of the stock markets. I think stock markets are very well placed to go up.
Okay. We're joined in by Atanu Saha from Kolkata. A warm welcome, Atanu. Please ask your question.
Good evening.
Good evening.
Atanu Saha from Kolkata. My question is, our country is transforming to developing to a developed country near future within 2047, fill up all requirements. Sir, my question is, how do we get benefit from those direct and indirect work? Thank you.
I think the what is going to happen is that the income levels will go up, the prosperity of the entire population, that should go up. So in it, I mean, it will not be as if you know, you don't have a difference between the rich and the not so rich, but more or less everybody will be moving towards a middle class, what we call middle class today. So that will be the plus point, and I think the effort that is being made now is very commendable.
Okay. Now, let's talk about the global geopolitical worries. We have, as I mentioned earlier, the rising bond yields. We also have the rising crude oil rates, and there is a fading hope of the rate cut by the central banks. And this is keeping the Sensex and the Nifty under pressure. There are enough stock-specific opportunities in the market, do you think? How will the markets behave in the coming week, keeping these factors in mind?
Well, I think if the geopolitical situations don't worsen, and market should look up, the results of most companies are, the quarterly results are being announced.
Yeah.
Some of the tech companies have already come. We have a big announcement coming up from one of our major major companies. So seeing this situation, I think there will be opportunities in specific areas. As somebody said, that sometimes the results are good, but the market goes down. So when you have to evaluate that, is that a buying opportunity? So I think there will be opportunity in the market, and anybody who has taken a position need not be worried about the market per se. But yes, he should be looking carefully at the investment made and how the company is doing.
Okay. Moving on, the Nasdaq and the S&P 500 closed sharply lower on Friday, and the Treasury yields dipped as investors juggled lackluster earnings uncertainties surrounding central bank policy and geopolitical strife. The Dow was the lone gainer among the three major U.S. equity indices, while the Nasdaq, weighed down by mega-cap tech and tech-related momentum stocks, slid 2%. The session marked six straight daily declines for the S&P 500 and the Nasdaq, the longest losing streak since October 2022. The S&P 500 and the Dow registered their steepest weekly percentage losses since March 2023, while the Nasdaq saw its largest weekly drop since November 2022. The Dow Jones Industrial Average rose 0.5%, the S&P 500 lost 0.8%, and the Nasdaq Composite was down by 2%. The lackluster earnings, the uncertainty surrounding central bank policy, and the geopolitical strife, given these scenarios, will the Fed be cutting the rate or not cutting the rate? How do you foresee the scenario going forward?
See, the rate cuts now have gone earliest into September. So the rate cuts are not happening. And I think inflation will be the key element for the central banks and Federal Reserve in the US to cut rates. I don't think India, the RBI, will not reduce rates unless the Federal Reserve takes that step. So they will, in this case, be only followers. I think we should not get too much bogged down by all the negative news that is coming. The market gets priced. So all this negative news, what you are mentioning, has already been priced into the market. So it's not as if, you know, something dramatic is going to happen. As I said, we are only down 3.5%. So one should not lose their cool.
So what is the appetite up to which the Indian market can take these volatilities?
I think Indian market has done...
Because you say 3%, so don't worry.
Just to give you some statistics, you know, the FIIs in this calendar year have sold more than 70,000 crores. And yet, you know, the market is still, and with all these worries, I think the market has done well because there is money coming in from the Indian investors. So that is what is keeping the market afloat. Mm-hmm. So I think that's an important difference which has come. And as we say, you know, the FIIs in effect have been losing money because they have been selling their scripts and the market is going up in that sense.
So with the Q4 numbers failing to give any boost, do you see more pain in the Nifty IT index in the week ahead, given the trade setup?
I think IT is a little matter of concern, and the guidance given by the companies because will be important. You might have noticed TCS, people were happy, but you know, in Infosys, it's not so much the results, but the guidance, which was, you know, talking of a negative revenue in the coming quarter. I think that is going to be very company specific, and tech sector is under pressure, undoubtedly. That is why even the US markets have fallen the way they have.
Okay, you also mentioned about the earnings, Harsh, which mentioned that a lot of companies are going to give their earnings report coming week, RIL being in focus. So what should be the trade setup be, given the earnings are positive or given that the earnings are negative? How will the markets react according to the way the earnings move?
After the results.
Well, I think after the results, if you have that particular share, don't live by the quarter. Look at how the company has been doing. And over a period of time, because, you know, all these companies have like 5-year and 10-year plans, like we have a plan stretching up to 2037. Mm. So one bad quarter does not make the, the prospects of the company bleak. Okay. So this is where you have to be looking at the overall, performance of the company and then taking a decision.
बिल्कुल श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्रा, और आज शनिवार के दिन हम आपको आमंत्रित करते हैं आपके पास शेयर मार्केट से संबंधित देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल हो जरूर हमसे पूछें। दो टेलीफोन नंबर्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं, 2342-1050, 2331-4444, दोनों दिल्ली के नंबर, 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें और आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि हम पहले आपको ये बता दें कि इस वर्ष फरवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 15,48,000 नए सदस्य जुड़े हैं। इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। कुल नए सदस्यों का यह 56.36% है। इससे जाहिर होता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश लोग युवा हैं। और विजय जी, ईपीएफओ में ज्यादा खाता खुलना और ज्यादा यंग लोगों का जुड़ना ये दर्शाता है कि काफी नए लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं या लोगों ने एक रोजगार छोड़कर दूसरा उससे बेहतर रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है।
हाँ, ये जो आप बता रहे हैं इससे ये तो साफ है कि अब जो जिसको हम कहते थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो वहां पे हैं। ये जो आपने आंकड़े बताए उससे ये बहुत साफ हो गया कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। और ये तो जो ईपीएफओ तो फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर की हमको खबर उतनी नहीं मिलती, लेकिन जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जब होता है तो सब मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट का सीधा उसमें प्रभाव पड़ता है,
सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसा कि आपने बताया। इसके अलावा अगर हम राजेश गिग इकोनॉमी की बात करें और उसको देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं और उनकी अर्निंग हो रही है जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने बताया था, आपका इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से आप हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ, नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, पहले किसको लेकर के आप प्रॉब्लम
से? आपकी आवाज, हरीश जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, दोबारा सवाल पूछें।
अभी आ रही है सेमी कंडक्टर्स को लेकर, क्या प्रोग्रेस?
सेमी कंडक्टर्स को लेकर
क्या प्रोग्रेस?
सेमी कंडक्टर्स में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो अपना प्राइवेट सेक्टर है दोनों इस दिशा में काफी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये इतनी टेक्निकल चीज है और इसकी नो हाउ इतनी कम, मतलब टेक्निकल नो हाउ इतनी कम कंपनियों के पास से आप ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो जिस तरह के प्लांट्स लग रहे हैं, कुछ जो बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप हैं हमारे देश के, उसकी वजह से, उनके के आने से सेमीकंडक्टर एक जिसको एक थ्रस्ट एरिया है, एक थ्रस्ट एरिया की तरह से आ रहा है और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अभी दो हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों की आधारशिला रखी थी और ये कहा था कि भारत अपने वादों को पूरा करता है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत का बड़ा प्लान आईटी मंत्री ने बताया था, जिसका ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार बताया था। और सेमीकंडक्टर में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनेगा भारत, इस दिशा में काम किया जा रहा है। क्योंकि पीछे दिनों हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से, क्योंकि इसे हमें आयात करना पड़ता था ज्यादातर चीन से या ताइवान से, हमारी गाड़ियों का प्रोडक्शन भी रुका था। और आज सेमीकंडक्टर राजेश ऐसी चीज बन चुका है जिसके बिना हम किसी भी इक्विपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। इस पर और चर्चा करेंगे, अच्छा टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गौरव जी के पास जो गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्ते मार्केट मंत्र टीम।
नमस्ते।
मेरा सवाल है, ये विकसित भारत या डेवलप्ड नेशन बनने के लिए व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड इज जीडीपी पर कैपिटा, इज देयर एनी पैरामीटर एंड वेयर वी डू स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर? बिकॉज इसमें कई पैरामीटर्स होते होंगे जैसे सीवर लाइन, पाइप लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम लोग डेवलप कहलाने लगेंगे या कहने के पास में रहेंगे? एंड इन दिस मैराथन वेयर डू वी स्टैंड टूडे एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स, हाउ वी विल प्रोग्रेस? थैंक यू।
जो ये विकसित भारत का एक सपना हम लोग लेके चल रहे हैं, इसमें जो आपने पैरामीटर्स कहा, इसमें जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो अभी हम 7% की ग्रोथ आ रही है वो मेंटेन होनी चाहिए, और क्योंकि जीडीपी में जो जितनी भी चीजें हैं उसका सारा समावेश हो जाता है, और उसी जैसा आप हम जो पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है अभी, तो और हम तीसरे की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे बोला भी गया है कि इस अगले पांच सालों में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म गोल ये है, और उसके बाद क्या क्या इसमें हम लोग टारगेट्स रखते हैं वो जरूरी है, लेकिन विकसित भारत के सपने के लिए बहुत मेहनत और लगातार इसमें जो है एक
प्रोडक्शन को भी लगातार हमें उसमें बढ़ाना होगा, और जिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, एक बार जब हम विकसित हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगा, जो बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन उनकी पॉपुलेशन उनकी आबादी बहुत सीमित हो जाएगी, साथ में सोशल सिक्योरिटीज एजुकेशन और इंश्योरेंस जैसी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक तरीके से बढ़ता है, और तीसरी अर्थव्यवस्था जैसे विजय जी बता रहे थे एक अगर हम वहां तक पहुंचते हैं जो कि जल्दी ही पहुंचेंगे, तो ये सारी चीजें आप समझ लें कि आपको मिल जाएंगी और भारत विकसित बन सकता है।
एज ऑल्सो व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर सेड टुडे इन गुजरात, द टोटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यू नो we will be able to face the challenges like the inflation or double digit inflation, etc. So all this will take place once we are totally fixed. We go on and say hello to Dr. Anil Kharbanda from Delhi. A warm welcome. Please go ahead and ask your question.
Namaskar.
Namaskar.
I have a question. Khash Ranjan ji, I am very happy. I have talked about it first. Rajesh ji, I am very happy. Namaskar.
Namaskar ji.
मतलब जो ब्लू इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी जो टर्म्स यूज किए जाते हैं अक्सर, ब्लू इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी,
ओके,
तो ये इन वर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, जो
जी जी जी,
तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन एक्चुअली कुछ होता है कि नहीं, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का स्कोप क्या है आगे?
आपके आपके सवाल बहुत बढ़िया है, और इकोनॉमी के कोर इकोनॉमी से ये जुड़े हुए सवाल है, थोड़ा ज्यादा समय इसमें लगेगा लेकिन वक्त खत्म हो चला है, मैं विजय जी से अपने एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा कि बहुत संक्षेप में इसको आप समझाएं।
ब्लू इकोनॉमी जो वाटर से कनेक्टेड होती है, चाहे उसमें फिशरीज और इस तरह की चीजें आ जाती है, ग्रीन इकोनॉमी तो हमको पता ही है कि जो हमारे यहां पे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो ग्रीन इकोनॉमी है, और सेक्युलर इकोनॉमी तो बिल्कुल ही अलग है,
सर्कुलर इकोनॉमी
तो मैं समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे हैं, और जो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो यही होता है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है तो आपको उस पर टैक्स लगे, और रिग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है कि जो लोग टैक्स देने के या जिनकी आज आमदनी कम है जब उनको टैक्स देना पड़ता है, ये ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है, तो उसको रिग्रेसिव माना जाता है।
सो सर्कुलर इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग रिसोर्स यूजिंग ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज biodiversity loss and pollution. That is a circular economy. Moving on, the crude oil prices dipped earlier as supply concerns eased in the wake of Iran's subdued response, reversed course and settled modestly higher amid lingering uncertainties arising from geopolitical instability. U.S. West Texas Intermediate crude rose 0.50% to settle at $83.14 per barrel, while the Brent settled at $87.29 per barrel, up 0.2% on the day. Vijay, thank you so much for being with us and answering the queries of our listeners.
Thank you. My pleasure. Thank you so much.
And before we close the headlines, once again, Nirmala Sitharaman reiterated the commitment of the BJP government to achieve the dream of Viksit Bharat at 2047. In the U.S. markets, Dow was a lone gainer among the three major U.S. equity indices. Crude oil prices advanced as the market kept an uneasy eye on unfolding turmoil in the Middle East. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar.
भारत सरकार।